ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் புஷ்பதன்ஸ் சிவ மஹிம ஸ்தோத்ரா இன் ஹிந்தி, ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி நிஷ்தானந்தஜி சரஸ்வதி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
இஸ்கோ பி ஜானா ஹை, யே மேரா ஹி கடா ஹுவா கியா ஹுவா சன்சார் ஹை, மேரா ஹி விஷ் ஹை. பி ஜானா யானே சஹனம், இசி கோ திதிக்ஷா கேதே ஹை, சஹனம் சர்வ துக்கானாம். யே ஆப் ஜப் குரு கே பாஸ் ஆதே ஹை தோ குரு பஹலே தின் ஜோ படாதா ஹை வோ யே ஹை. ஹா, கியா படாதே ஹை குருஜன், பை தத்வபோத் கோலோ, அப்ரோக்ஷானுபூதி கோலோ, விவேக் சூடாமணி, கியா சிக்காதே ஹம், சாதன் சதுஸ்தய சம்பத்தி. பஹலே தின் ஆப்கே ஆப்கே பேங்க் பேலன்ஸ் மே ஹம் சம்பத்தி பர் தேதே ஹை பஹலே ஹி தின். ஐசா தோ கோய் கரேகா? ஐசே தோ மாதா பிதா பி நஹி கர்தே. பச்சா மெச்சூர் ஹோதா ஹை தோ உஸ்கோ செக் புக் தி ஜாதி ஹை. ஓர் யஹாம் மெச்சூர் இம்மெச்சூர் கி பாத் ஹி நஹி, பஹலே ஹி ஆயே ஓர் குரு சம்பத்தி சே பர் தேதே ஹை. கித்னி சம்பத்தி? சார் சார் சம்பத்தி தேதே ஹை. கௌன் சி? தோ போலே விவேக், வைராக்ய, ஷட் சம்பத்தி ஓர் முமுக்ஷுதா. தோ யே விஷ் கா பி ஜானா யானே உஸ்கே லியே கௌன் சி சம்பத்தி சாஹியே ஆப்கோ? ஓர் குரு கி தி கயி சம்பத்தி ஹோகி, யஹி ஜ்ஞான் ஹோகா, தோ ஹி ஆப் யே விஷ் பி சகேங்கே. தோ க்யா ஹை வோ திதிக்ஷா ஹை, சஹனம் சர்வ துக்கானாம் அப்ரதிகார பூர்வகம் சிந்தா விலாப ரஹிதம் சா திதிக்ஷா நிகத்யதே. தோ சஹனம் சர்வ துக்கானாம் யானே பகவான் சங்கராச்சாரிய ஜி க்யா கஹனா சாதே ஹை? தேக்கியே, ஆப்கோ குச் துக் ஆ கயா, துக் ஆ கயா, ஓர் ஆப்னே வோ துக் கே பீச்சே பஹுத் ஹி பிரலபன் கியா, பஹுத் ஹி கம்ப்ளைன்ஸ் கி, ஓர் ஃபிர் ஹம் க்யா பதாதே ஹை கி பாய் மே பஹுத் சஹன் கர் ரஹி ஹூன். तो आप दुखी हुए कि नहीं? सहन करने का भाव तितिक्षा नहीं है. तितिक्षा यानी क्या? कि सहन करने का भाव ही नहीं प्रवेश हो, दुख दुखी न लगे, वो तितिक्षा की अवधि है, एक्सटेसी है. हाइट ऑफ तितिक्षा इज व्हाट? सहन. आप जिस क्षण आप बोले कि मैंने ये बहुत सहन, मैं इसको बहुत सहन करता हूं, हाँ, तो तितिक्षा नहीं हुई. आप दुखी तो हो ही गए ना, आपका रिजेक्शन हो ही गया, प्रतिकार हो ही गया, प्रतिक्रिया हो ही गई. और यहां अप्रतिकार पूर्वकम कहा है, प्रतिकार ही नहीं करना है, यानी ये दुख के तरह इसको नोटी नहीं कर, नोटिस ही नहीं लाना है. क्यों? मेरा ही खड़ा किया गया विष है, मेरा ही विचार है. हा? अपना विष आपको क्या, सांप का जहर खुद को, उसको सांप को मारता है क्या? सांप का जहर सांप को नहीं मारता. मेरा विष मुझे कैसे मारेगा? पर मेरा विष मुझे मार सकता है. सांप का जहर निकाल के सांप के ब्लड सर्कुलेशन में डालो तो सांप मर जाएगा उसी के जहर से. हाँ, मेरा जहर अभी बाहर निकला, निकाला तो क्या होगा? राग द्वेषात्मक जहर बाहर निकाला, क्रोधात्मक जहर बाहर निकाला, ईर्ष्या का जहर बाहर निकाला तो क्या होगा? ये जैसे ही जिस क्षण जहर बाहर निकाला, समझ लेना सांप के ब्लड सर्कुलेशन में जहर गया और वो मर गया, ऐसे हमारा ही जहर हमें मार डालेगा. इसीलिए यहां ये सांकेतिक भाषा है, पर अभी शंकर प्रभु ने क्या किया कि भाई ये तो व्यष्टि रूपी जहर है, पर समष्टि रूपी ये पूरे विश्व को, समष्टि रूपी जहर यानी अज्ञान रूपी जहर, ये अज्ञान जब बाहर निकलता है तो अज्ञान का जुरुम्बण क्या है? अज्ञान यानी यही माया. नयस्त विद्या मनसोतिरिक्ता मनोय विद्या भवबंद हेतु தஸ்மின் வினஷ்டே சகலம் வினஷ்டம் விஜ்ருவிதேஸ்மின் சகலம் விஜ்ருவிதே. க்யா ஹை? நஹி அஸ்தி அவித்யா மனசோதிரிக்தா. பகவான் சங்கராச்சாரிய ஜி விவேக் சூடாமணி மே பதா ரஹே ஹை, ய அவித்யா ஹி க்யா ஹை? யஹி மன் ஹை. மேரே பாஸ் மேரி தக் பாத் ஆ கயி. ஓர் யே ஜோ மன் ஹை, சமஷ்டி ஜோ அவித்யா ஹை, வோ க்யா ஹை? வோ மாயா ஹை. யாரே பரமாத்மா கி ஜோ உபாதி க்யா ஹை? தோ பாய் மாயோபாதி ஈஸ்வர, அவித்யோபாதி ஜீவ. வோ ஆப்கோ அபி சமஜ் மே ஆயேகா கி ஜோ ஜீவ் ஹை உஸ்கி உபாதி க்யா ஹை? அவித்யா ஹை. பர் யே அவித்யா க்யா ஹை? யே மன் ஹை. யே மன் க்யா ஹை? மன் ஹி மாயா ஹை. மாயா கி உபாதி கிஸ்கி ஹை? தோ போலே ஈஸ்வர கி ஹை. யானே யே ஈஸ்வர, அவித்யா, மன், மாயா, ஜீவ், சமஷ்டி வ்யஷ்டி கோ ஏக் கரோ தோ யே அஜ்ஞான ரூபி ஜோ விஷ் ஜோ ஹை உஸ்கா அபான், யே ஜோ அஜ்ஞான ஜோ ஹை, மேரே खुद के अहम का अज्ञान जो है वो सबको विषैला कर देगा. और ये जो परमात्मा का नाम स्मरण है, परमात्मा का ज्ञान है, अगर ये शिव जी कहते हैं कि ये विष मैं नहीं पी जाऊं तो ये सृष्टि में से, ये ब्रह्मांड में से अज्ञान कभी भी तिरोभूत नहीं होगा. इसीलिए पी के आकंठ यहाँ रख दिया कि बाहर जो शुद्धि हो जाए ये शुद्ध सत्वगुण ऐसा का ऐसा ही रह जाए, क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम। ये सत्वगुण रूपी ज्ञान की जो परंपरा जो है, ज्ञान के आदान प्रदान की परंपरा जो है, ये जो विधि जो है वो ऐसी की ऐसी ही बनी रहे। ऐसे विषपान सहजता से कर लिया, विष कौन सहजता से पी सकता है? जो अपने स्वभाव को जिसने जान लिया है वही विष का सहज रूप से पान कर सकता है। तो यहाँ कहते हैं, खूब अच्छी बात करते हैं। देखिए, परमात्मा की मात्र आराधना या स्तुति नहीं करनी है, प्रेम से स्तुति करनी है। वो कोई अपना है ऐसे स्तुति करनी है। देखिए, स्तुति की भी दो प्रकार की होती है। आप किसकी स्तुति करेंगे और आपको उसके लिए प्रेम न हो तो वो स्तुति कैसी की जाएगी? वो सिर्फ ये वो स्वार्थ वाली स्तुति हो जाएगी। भाई आप तो शेठ, आप तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा है ऐसा है। क्यों भाई? कुछ चाहिए? हाँ, कैलकुलेटेड स्तुति है, कैलकुलेटेड प्रेम है, ऐसा नहीं है। यहाँ चाहिए तो सिर्फ क्या चाहिए श्री पुष्पदंत जी को? भाई माफी चाहिए, हाँ क्षमा चाहिए कि निर्माल्य का उल्लंघन हो गया है तो ये न कहना प्रकरण। फिर क्षमा ही खाली नहीं चाहिए, और क्या चाहिए भाई? कृपा भी चाहिए कि भाई इस बहाने भी मैं आपके पास आ ही गया हूँ तो अब ये अज्ञान से भी मेरा उद्धरण करने वाले आप ही है। समस्त ब्रह्मांड रूपी अज्ञान का विष जो पी सकता है वो मुझ में अज्ञान कैसे रख सकता, मेरा भी अज्ञान कैसे देख सकता है? इसीलिए गुरुप शक्ति का बहुत महात्म्य है। गुरुजन क्या करते हैं, हमारे विष को पी जाते हैं। हाँ, आपको शरण में आना है। आप जैसे ही शरण में आ गए, आपने समर्पण कर दिया, तो क्या करेंगे? आपका अज्ञान रूपी विष और घोल वो पी जाएंगे और रख देंगे। हानि नहीं होती। क्यों नहीं हानि होती? क्योंकि जिसने वो विद्या, वो परम प्रभु को प्राप्त कर लिया है, उसे अब कुछ भी छू नहीं सकता, उसका कुछ भी कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है। और इसीलिए हे शिव जी, हे गुरु, पहले गुरु कौन है? ये शिव जी है। हाँ, सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो ये जो शिव जी है, ये शिव जी प्रतीकात्मक है। हम सब गुरुजन जो है, गुरु की जो उपाधि जो है, गुरु का जो नाम जो स्टेटस है, वो गुरु ही शिव जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्या कौन से प्रतीक है? तो बोले परम गुरु के प्रतीक है। ये परंपरा के जो गुरुजन है उनके प्रतीक है। विषपान करने वाले हैं, हे शिव जी आपके चरण में आ गया हूँ, और विष पीने का सामर्थ्य सिर्फ आप में ही है और किसी में भी नहीं है। इसीलिए कुछ पाने के लिए स्वार्थी स्तुति नहीं है, मैं प्रेम से स्तुति कर रहा हूँ। तो ये प्रेम कहाँ दिख रहा है? ये जो अंतिम लाइन है उसमें प्रेम दिख रहा है। कहते हैं, विकारोपी श्लाघ्यः भुवन भय भंग व्यसनिनः। परमात्मा को व्यसनी बोलते हैं। आप किसको व्यसनी बोल सकते हैं? भाई तू तो व्यसनी है, आपके पास कोई आया और आपने बोला तू व्यसनी है, तो किसको बोल सकते हैं? जिसके ऊपर प्रेम हो, जिसके ऊपर श्रद्धा हो कि मेरे उसको व्यसनी बोलने में भी उसे कोई भी कष्ट न हो। हाँ, मेरे ऐसे वाक्य, ऐसे कटु वाक्य भी वो प्रेम के जैसे पी जाएगा, उसे ही आप बोल सकते हैं ना कि तू व्यसनी है। तो यहाँ खूब प्रेम से बोलते हैं कि आप तो व्यसनी है शिव जी। तो शिव जी क्यों व्यसनी है? तो बोले कि जगत के जो अज्ञान रूपी भय है उसे मिटाने के लिए, उसको मिटाने वाला व्यसन आपको चिपक गया है, हे शिव जी। हाँ, जगत के अज्ञान को, जगत का जो नाश है, जगत को जो हानि हो रही है ये विष से, वो विष का बारंबार पान करने के लिए जाने के आपको व्यसन हो गया है, आपको आदत पड़ गई है, आपको स्वाद लग गया है। हाँ, और इसीलिए आप ये जाने विष पान कर रहे हैं। ऐसे आपके जो व्यसन रूप विकार भी है वो भी आराधने योग्य है, वो भी सराहना करने के योग्य है। हाँ, वो भी कैसे हो जाते हैं? वो भी ब्यूटी हो जाती है। ये आपका व्यसन है, यानी क्या कहा है कि ज्ञानी का जो व्यसन जो है, आपको लगता है व्यसन है, ज्ञानी का व्यसन भी सराहनीय हो जाता है। कभी कोई ज्ञानी से न कहना आपको ये व्यसन है अच्छा नहीं है, आपकी ये आदत अच्छी नहीं है, आपका ये स्वभाव अच्छा नहीं है, आपको इस प्रकार नहीं रहना चाहिए। वो सब कुछ रहना ये शिव जी का, और शिव समान आपके गुरु को आप शिव जी मान रहे हैं तो उनकी कोई भी आदतें, कोई भी स्वभाव, उनका कोई भी दिन शुरू होने से रात तक का उनका कोई भी विचार चहल पहल आपको अखरनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यह वो सराहनीय है, ऐसा कहा है। ज्ञानी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते, वो जब उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। वो जो खाते हैं वो चीज खाने लायक हो जाती है, वो नहीं खाते वो वर्जित हो जाती है। वो जो नहीं करते वो नहीं करने जैसा हो जाता है, जो करते हैं वो करने जैसा हो जाता है। हाँ, ये आभा है, पूरी प्रकृति उनके साथ चलती है, वो प्रकृति के साथ कैसे चलेगा? हाँ, तो यहाँ ये जो बात है साधक को थोड़ी ध्यान रखनी जरूरी है। इसका गान उच्चारण हो गया है ना 15 का? हाँ, अब हमारे समस्त जन्मों के जो काम है, क्रोध है, वासनाएं है, और शिवजी विष का पान करते हैं, यानी मेरी वासना का भी पान कर जाएंगे मेरे गुरु? हाँ, कर जाएंगे, पर उसके लिए हमें कैसा होना चाहिए? क्योंकि ये शिवजी जो है, जो विष पान करने वाले हैं, विष पान करने में सक्षम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मेरे अंतर ही वो शिव है, और वो शिव ही वो वासनाओं का पान करने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे कैसा होना चाहिए? तो शिवजी कैसे हैं ऐसा समझ लीजिए। तो कहते हैं कि हे ईश्वर, देव और दानव मानव सहित पूरे जगत के ऊपर सिद्धि और विजय हासिल करने वाले कौन है? कौन, किसने सिद्धि हासिल की है? भाई कामदेव ने, काम ने, इच्छा ने, वासना ने, आसक्ति ने, लॉन्गिंग जो कहते हैं ना, डिजायर्स, उन्हें काम कहते हैं। और ये काम का भी जो देव है, वो कामदेव के जो बाण है, वाण है, कामदेव का जो कर्तृत्व है, जिस प्रकार काम प्रवेश करता है, वो सबको लोभ में लगा दे सकता है, सिवाय आपके। आपको कामदेव भी प्रभावित नहीं कर सका। हाँ, तो हमें कैसे होने चाहिए? भाई हमारे शिवजी कैसे हैं? मेरा स्वात्मा, मेरा अहम कैसा है? कोई भी प्रकार के प्रलोभन से, कोई भी प्रकार के विषय से जो लोभान्वित नहीं होता है, जो आकर्षित नहीं होता है, जो पागल नहीं बनता है, वो है शिव। और मुझे ऐसा होना है, ऐसे शिवजी के जो ये प्रशंसा के श्लोक है, इसे अर्थवाद कहते हैं, ये स्तुति है, उससे हमें ऐसे बनने की थोड़ी बनने के लिए हमें उत्सुकता प्रेरक ये सब वाक्य है, हमें ये बनने के लिए उत्सुक कर रहे हैं। तो कहे वो जो कामदेव जो है, वो आपको कुछ भी नहीं कर सके। और हुआ क्या कि जब वो काम आपको पीड़ित करने के लिए आया, बात ऐसी हुई थी, तारकासुर नामक एक राक्षस था, और तारकासुर ने शिवजी को ही आराध्य देव बना के ऐसी उपासना की कि वो अमर होने लगा। और असुर जब अमर हो जाता है, असुर के पास जब शक्ति आ जाती है, तब वो देव को, शुद्ध चित्त अंतकरण वाले व्यक्तियों को ज्यादा परेशान करने लगता है। तो ये जो देवता थे, स्वर्ग आदि देवता थे, मनुष्य लोक में भी, पृथ्वी लोक में भी जो ब्राह्मण आदि देवताएं थे, जो ये ब्राह्मण आदि देवता यानी जो ब्रह्म के वो जानने वाले हैं, वो सभी ही ब्राह्मण हैं। और वो जो सत्व बुद्धि मनुष्य थे, वो सब विष्णु वो भगवान के पास जाते और कहते हैं कि तारकासुर जो है वो ज्यादा ही मुझे अभी नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसके नाश का कारण अवश्य ढूंढना ही चाहिए। तो कहते हैं कि भाई शिवजी से तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से उसकी शक्ति बढ़ गई है, तो क्या करना है, उनके नाश का कारण क्या है? तो बोले कि शिवजी का जो पुत्र है, वो पुत्र से ही ये तारकासुर का नाश होना चाहिए। पर शिवजी के साथ पुत्र की बात ही नहीं की जाती है, बोलेगा कौन? काम की परछाई भी जिसे पहुंच नहीं सकती, उनके लिए पुत्र की विचार करना भी असंभव है। तो अभी क्या किया जाए? तो कहा कि कामदेव जो है, कामदेव को हम प्रार्थना करेंगे कि शिवजी को ये पुत्र प्राप्ति के लिए प्रेरित करें। और कामदेव ने अपनी विविध चेष्टाओं से शिवजी को प्रेरित करने की कोशिश की, पर तुरंत ही शिवजी को अब ऐसा लगा कि इसको मैं प्रेरित नहीं हो रहा हूँ एक बार दो बार तो इसे पता लग जाना चाहिए कि मैं इसमें उत्सुक नहीं हूँ, फिर क्यों ये मुझे परेशान कर रहा है। तीसरा नेत्र खोला और वहीं वो भस्मीभूत हो गया। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि संसार में भी काम, काम यानी कोई भी प्रकार का जो इंद्रिय का विषय है वो काम ही है, और वो प्रलोभन हमारे पास आते हैं। तो वो प्रलोभन जो है क्यों आते हैं, क्यों अखरते हैं, क्यों मुश्किलें हैं, ऐसी बात नहीं है। आ गए तो उसका नाश करना, उसका ध्वंस करना, उसके लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। और ऐसे पुरुषार्थ करने वाले हे प्रभु, वो कामदेव स्मरण शेष हो गया। और अब मैं कह रहा हूं कि हकीकत में इंद्रिय जीत जो पुरुष है वो उसका कोई काल में कोई भी भुवन में तिरस्कार नहीं हो सकता। जो इंद्रिय जीत हो गया यह निष्कामः अकामः आत्मकामः आप्तकामः नतस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्मापेति। उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते क्योंकि निष्काम है। ये निष्कामत्व इतना हम क्यों कहते हैं आपको, अकामत्व लाना इतना क्यों कहते हैं, तो ही ये जो प्राण जो है वो उत्क्रमण नहीं करेंगे। उत्क्रमण करके कोई गर्भ में संक्रमण भी नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, जैसे वो जल का बिंदु संभाल के रखा तो क्या हुआ, समुद्र में डाला तो समुद्र बन गया। इसी प्रकार ये जो जीव जो है उसको शुद्ध रख के काम वासनादि से अशुद्धिया से परे रख के परब्रह्म के विचार में, परब्रह्म के स्मरण में, सत्संग में डाल दिया, उनकी बातों में डाल दिया, तो क्या होगा, वो ब्रह्म ही अंतिम बन जाता है। अब ऐसे जो परमात्मा थे, ऐसे शिव जी है, अब उनके तांडव नृत्य की बात करते हैं। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि, सृष्टि का तांडव याने क्या, देखिए तांडव याने नृत्य तो कर्तृत्व आ गया, तो यहाँ क्या बताते हैं, प्रतीकात्मक, सब कुछ प्रतीकात्मक है। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण है परमात्मा आप ही है। यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते येन जातानी जीवन्ति। तांडव करते रहे तो करते ही रहे क्या, अभी तक तांडव करते हैं नहीं, हाँ वो उनकी एक आभा है, एक झलक है। जैसे ये सूर्य है, आप उदयपुर में जाएंगे ऑब्जर्वेटरी में तो आपको दिखाई देगा कि सूर्य जो है वो ज्वालाओं के रूप में है, अनंत ज्वालाएं हैं। और उसमें वो देखने के लिए क्यों जाते हैं, वो टेलीस्कोप से देखते हैं क्या, वो लोग हमें दिखाते हैं पर उसका इमेज दिखाते हैं, डायरेक्ट तो आप देख नहीं सकते, आंख को नुकसान होता है। तो हर थोड़ी सेकंड में सूर्य में से बहुत बड़ी ज्वाला निकलती है, वो दिखती है इतनी टेलीस्कोप में पर बहुत बड़ी ज्वाला है, ऐसे निकल के छूट के चली जाती है बाहर, निकल वो गैसेस है, वो निकल के ज्वालाएं छूट के चली जाती है। तो सूर्य में से ज्वाला का निकलना वो सूर्य का कर्म नहीं है, वो सहज तरीके से सूर्य है तो ज्वालाएं का निकलना हो जाता है। ऐसे ये शिवजी है तो तांडव हो जाता है, यानी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कार्य अपने आप सहजता से बताया है। देखिए ये नृत्य की बात ही यहाँ क्यों की, क्योंकि देखिए यहाँ से आपको वहां चलना है तो प्रयत्न करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। नृत्य के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता है। वो नृत्य, नृत्य एक ऐसी चीज है जो भीतर से उठती है, अपने आप हो जाती है। वो किया गया नृत्य की बात नहीं है, नृत्य यानी हो जाता है, हाँ भक्ति हो जाती है, भजन गाते हैं हो जाता है, भजन गाने की चेष्टा नहीं करनी है, गाया जाता है, अपने आप निकल जाए, ये क्या है, नृत्य यानी स्वयं स्फुरित है, उसके पहले विचार नहीं करना पड़ता है। हा? वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, चैतन्य महाप्रभु भी डोलते थे, दौड़ रहे थे, तो ये हो जाता है अपने आप। नृत्य की बात इसलिए की कि ये एक ही ऐसी अवस्था है जो स्वयं स्फुरित है, अपने आप हो जाती है, यानी परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय आप करते नहीं है, आपसे हो जाती है, ये एक आपका भाव है, ये आपकी एक भंगिमा है। और वो नृत्य को हम क्या करते हैं, नृत्य को जाना जाता है, उसे जस्ट यू हैव टू एंजॉय दैट, नृत्य का आनंद लिया जाता है। जो नृत्य नहीं करता वो भी नृत्य का आनंद ले सकता है। ऐसे परमात्मा में से ये जो सृष्टि हो गई है उसमें आप जो अस्थि भांति प्रिय रूप अनुस्यूत है वो आनंद ही हमें प्राप्त करना है। ये भीतर का जो शिव है वो वही भीतर से नाचने लगता है, डोलने लगता है। तो आपका तांडव नृत्य कैसा है, हे भगवान? संधि काल में जगत के भक्षण करने की इच्छा रख के जिस राक्षस ने अपने तांडव नृत्य से, वो राक्षस को अपने संधि काल जो है, देखिए कोई भी स्तोत्र दे, हमारे सुबह उठ के हम क्यों दीप बत्ती जलाते हैं, क्यों प्रार्थना करते हैं, और शाम को भी संधि काल जो है, तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र युक्ताम, ये शिव तांडव स्तोत्र में भी लिखा है, प्रदोष समय उसे कहते हैं, यश शंभु पूजति प्रदोष समय। तो प्रदोष समय संधि काल में जो है, इसमें कोई डरने वाली भी बात नहीं है, चिंता भी मत करना, पर सबका अपना अपना एक काल होता है ना, तो संधि काल में ये तमस गुण जो है वो ज्यादा थोड़ा रहता है। हाँ, तो उसमें जो राक्षस भाव जो है, दानव जो है, वो थोड़े ज्यादा शक्तिवान शक्तिशाली हो जाते हैं। जैसे आपकी सोलर पैनल है, हाँ, आपने टेरेस के ऊपर लगा दी, तो वो शक्तिवान कब हो जाएगी, एकदम ज्यादा सूर्य के प्रकाश में, और रात को क्या होगा, उसकी शक्ति कम हो जाएगी। ऐसे ये जो जीव भाव जो है, हाँ, ये जीव भाव के ऊपर पूरा अज्ञान का लेप हो गया, तो उसके ऊपर जब ये प्रभाव पड़ती है ब्रह्म की, तो वो क्या होता है, वो दानव के रूप में कार्यान्वित होते हैं। ये जीव भाव है उसके ऊपर ये ज्ञान आ गया, अगर आपके पास आत्मज्ञान है, ये शिव का नाम एक भी बार, परमात्मा का नाम एक भी बार उच्चारण मुख से कर लिया, तो प्रदोष समय आपको नुकसान नहीं करेगा। यानी अभी उसकी चिंता छोड़ के जो हमें समझना है वो समझ लीजिए। तो यहाँ कहते हैं कि प्रदोष काल में हे परमात्मा, ये जगत को, आपके भक्तों को परेशान करने वाले जो राक्षस है, वो राक्षस को आपके तांडव की एक ही थाप हो गई ना, तो पूरा जगत, आपने वो राक्षस को डराने के लिए तांडव शुरू किया, पर ये जो आपकी एक पैर भी के भी जो हलन चलन जो क्रिया हुई, उससे तीनों धरती भी इतनी डर गई, धरती माँ भी डर गए, और तीनों भुवन, तीनों जो ये ब्रह्मांड जो है, ये चौदह लोग, ये सब समस्त ब्रह्मांड जो है वो जाने की डर गया, सहमा गया कि पूरे ब्रह्मांड का आपके पादाघातात, मही पादाघातात व्रजति सहसा संशय पदम, ऐसे संशय हो गया कि मानो ये सबका नाश होने वाला है, यानी आपका जो नृत्य है वो जगत की रक्षा के लिए है। हमने परमात्मा, हमने गुरु चरण की अगर उसमें शरणागति स्वीकार कर ली, तो अपनी रक्षा जो है वो गुरु ही करते हैं, वो शिव ही करते हैं, वो गुरु की समक्ष, गुरु और शिव एक ही है, ऐसे गुरुजन हमारी रक्षा करते ही हैं, फिर तांडव हमें करने की जरूर नहीं है। वो गुरुजन जो है, ये तांडव यानी कैसे तांडव करते हैं, अपनी आंखों से देख लिया, वाणी से कुछ शब्द बोल दिया और हमारी रक्षा हो जाती है। ऐसे अभी पुष्प दंत जी कहते हैं कि हे परमात्मा, ये विश्व वाले संसार में मुझे अभी चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने आपका शरण ले लिया है, और आपके एक तांडव की थाप पूरे ब्रह्मांड को अगर डुला सकती है, भयान्वित कर सकती है, तो मेरा ये जो पाप, मेरे मुझे जो परेशान करने आ रहे हैं, जो कोई भी दानव, दानव यानी ये विचार रूपी दानव, विचार आ जाते हैं, तामसिक विचार यानी प्रमाद रूपी, ये प्रमाद ही दानव है। आत्म साक्षात्कार के लिए पुरुषार्थ न करना, प्रमाद करना, यही दानव है, और ये दानव को भगाने वाले आप हैं, वही तांडव है। आपके पैर के आघात से पृथ्वी अचानक दब गई, ऐसे संदेह में आ गई, और आकाश में ऐसे ऐसे घूम रहे आपके जो हाथ है, वो हाथ से आकाश भी विकंपित होने लगा कि अब मेरा भी नाश निश्चित है। नक्षत्र का समूह जो है वो जाने की टूट पड़ा ऐसा लगता है। आपकी जटा जो है, जटा कटाह संभ्रम ब्रह्मण्य लिंप निर्झरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वलल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्र क्षेत्रे रति प्रतिक्षण। एक क्षण के लिए ये परमात्मा के अंदर रति हो गई ना तो काम बन जाएगा। ये जटा आपकी कैसी है? कटाह के समान है, बहुत बड़ी कठरोट होती है ना, उसके समान ये जटा है। उसके अंदर से घुमड़ घुमड़ के गंगा जी आ रही है और उनका इतना प्रवाह है, वो प्रवाह भी सहन करने जैसे योग्य। अभी भी आप जाए तो गंगा जी का प्रवाह वही है क्योंकि वो जटा में से आ रही है। और उसमें नाद कौन सा है? आपकी जटा जब फिरती है पूरे ब्रह्मांड में तो धगत 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 ऐसे आवाज ऊपर से आ रही है, हे प्रभुता, हे परमेश्वर। ये प्रभुता जो है वो प्रतिकूल ही है, यानी परमात्मा और गुरुजनों से कुछ भी होता है, उनके तरफ से जो कुछ भी आता है लगता है कि टूट जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो भी प्रतिकूल है। आपके हे गुरु, गुरु के पास इतनी शरणागति से जाना कि आप बर्बाद भी कर देना तो भी मेरे लिए वो अच्छा है, वो प्रतिकूल है। बस इतना ही समझ लेंगे तो हमारा जीवन जिया हुआ सार्थक हो जाएगा। अभी एक मैं श्लोक लूंगी, उसका भाषांतर और फिर मैं प्रवचन समाप्त करूंगी। वियद व्यापी तारा गण गुणित फेनोद्गम रुचि प्रवाहो वारायः
जलधि वलयम् तेन कृतमित अनेन्नेवो नेयम् धृतमहिमदिव्यम् तव वपुः।
ये श्लोक में बता रहे हैं, ये जो शिवजी के ऊपर जो गंगा जी है, हमें लगती है कि गंगा जी का प्रवाह बड़ा है, पर शिवजी के ऊपर मानो एक पानी का एक बिंदु है ना, ऐसे पूरे गंगा जी है। इतना विराट उनका स्वरूप है, आकाश में फैले हुए जो वो गंगा जी का प्रवाह गटाह में फिर रहा है, तो बुदबुदे फैन भी होगी ना, फैन और बुदबुद जो होते हैं वो पूरी आकाश की जितने तारा गण है, पूरी आकाश गंगा है, वो कांति, वो आकाश गंगा की कांति को हरण करने वाली आपके जटा के भीतर बैठे हुए गंगा जी का प्रवाह जो है, पूरे आकाश गंगा की जो प्रभा है उसका भी वो हरण कर रहे हैं। यानी सूर्य के पास एक दीपक है, ऐसे ये गंगा जी का प्रवाह जो है ये उतना उत्कट और प्रकाशमय है, क्योंकि आप प्रकाश पुंज है, आपका प्रकाश वो गंगा जी में से निकल रहा है। वो जल का प्रवाह है जो आपके मस्तक के ऊपर है, वो इतना छोटा दिख रहा है। ये जल प्रवाह समुद्र रूप, यानी कि देखिए ये परमात्मा का प्रवाह कैसा है, समुद्र के ऊपर, समुद्र रूप पूरी जो पृथ्वी है, पूरा जो समुद्र है वो जाने के कंदोरा हो आपके लिए। परमात्मा यानी पूरी विराट पृथ्वी, और वो पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसे कंदोरा बांध देते हैं, वो एक प्रकार का एक पहनने की जो सुवर्ण का होता है, चेन जैसा होता है, ये जो कंदोरा जाने के डाल लिया, ऐसे ये प्रवाह में से जो गंगा निकली, ये जो जल की उत्पत्ति जो हुई, ये पूरे समुद्र रूप जैसे कि आपने एक पहन लिया हो कंदोरा, ऐसे ये लग रहा है। यानी कि आप परमात्मा को, आप परमात्मा इतने व्यापक है तो भी आपके पास व्यापक से व्यापक चीज भी जो है वो कम और छोटी ही लगती है। इतने बड़े दिव्य देह के महिमा को तव वपुहु आप धारण किए हुए हैं, उसका अनुमान भी हे परमात्मा नहीं कर सकता। आपका जितना अनुमान करूं, पक्षी आकाश का अनुमान कितना लगा सकता है, उड़ता है तो भी आकाश का अनुमान नहीं लगा सकता, तो हम धरा पे बैठे हुए आकाश का अनुमान नहीं लगा सकते। ऐसे अनंत महिमा वाले हे परमात्मा आपकी मैं स्तुति करता हूँ, आपको रिझा रहा हूँ। याद रखना आज के प्रवचन में एक ही बात याद रखना कि जो शिव निर्माल्य जिस जो समर्पित है, हाँ, उसका हाथ पकड़ के आप तर जाना, उसके लिए कुछ भी काया वाचा मनसा कुछ भी नहीं बोलना। आपको नहीं ठीक लगे तो मुंह फिरा के चले जाना अच्छा है, पर कभी भी ऐसा उल्लंघन नहीं करना। ये स्तुति मुझे और आपको रचनी पड़ी तो क्या होगा, है इतने शब्द अपने पास, है इतना प्रेम शिव के लिए, और अगर जवाब ना में आए तो क्या रास्ता है वो आपको हमने बता दिया है। इसी प्रकार गुरुजन और शिव जी की कृपा हमारे ऊपर बने रहे, ऐसी ही प्रार्थना के साथ और विराम मैं शांति पाठ करूंगी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।